आगे देखिए, सूरत सबा है। एक कौम की नाशुक्रियों का जिक्र है। अल्लाह ने उनको कितनी नेमतें दी, लेकिन जब उन्होंने उसको पीछे डाल दिया तो अल्लाह ताला ने फिर उनकी नेमतें उनसे वापस ले ली। और बहुत ही खूबसूरत कह लीजिए कि बागों को अल्लाह ने झाड़दार बिरवेरान किस्म के बागों में बदल दिया। तो आइए ज़रा एक व्यू देखते हैं सूरत सबा का, बर्ड आई व्यू। पहली 9 आयतें अज़मत और कुदरत बारी ताला के बारे में। आयत नंबर 10 से 14 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की इनायात का जिक्र है। 15 से 21 कौम सबा की नाशुक्री। आयत 22 से 30 मुशरिकीन की गुमराहियों की ज़ोरदार नफ़ी है। और 31 से 33 गुमराह कायदीन की पैरवी का हसरतनाक अंजाम है। आयत 34 से 39 मालदारों की गुमराही की इसलाह है। और आयत 40 से 54 शिर्क करने वालों पर इत्माम में हुज्जत है। क्लोज सर्किट देखें तो पहली 2 आयतें अजमत बारी ताला। और हकीकत है कि जब दिल में अल्लाह की अजमत बैठ जाती है ना, तो फिर ही उसकी बात भी समझ आती है। कितने अहकामात लोग सुनते हैं, दिन रात सुनते हैं, मानेंगे कब जब दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई होगी। और अल्लाह की बड़ाई के लिए इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत है। या लमुमा या लिजु फिल अर्दी वमा या खुरजु मिनहा। जब ज़मीन से निकलने और उसमें जाने वाली चीज़ों को रब जानता है, आसमान से पानी निकालता है, तो बताइए क्या वो मेरे आपके दिल की बातें नहीं जानता। ज़रूरत है इस बात की कि अपने दिल को इन बातों का यकीन दिलाया जाए। फिर आयत नंबर 3 to 6 ज़हूर क़यामत कुदरत बारी ताला का मज़हर है। यानी क़यामत के आने के जो मराहिल शुरू होंगे, तो उसको देखते ही लोग मान जाएंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात कादिर है हर चीज़ पे। आयत 9 से 7 आखिरत का इनकार करने वालों के लिए धमकी है। कितना को इंतज़ार इनकार करोगे, और तुम्हारे इनकार करने से वो रुक थोड़ी जाएगी, तो ख़तरा तो नहीं टला ना। ये अलग बात है कि आपने आंखें बंद कर ली। फिर इसके बाद आयत 10 से 11 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला का फ़जल है। कैसे अल्लाह ने उनके हाथों में लोहे को नरम कर दिया और उनको हिकमत दी और फहम दिया। कैसे मुकदमात के फ़ैसले कर लेते थे। फिर आयत 12 से 13 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की इनायात है। हवाओं को मुसख़र किया, परिंदों की बोलियां सुन लेते थे, परिंदे तक उनकी अंडर थे, जिन्नात उनकी बात मानते थे। फिर आयत 14 में हज़रत सुलेमान की वफ़ात का दिलचस्प किस्सा है। कैसे जिन्नात काम पे लगे ही रहे, हालांकि हज़रत सुलेमान की रूह निकल चुकी थी, लेकिन असा के सहारे खड़े रहे। और सर पे खड़े हों तो काम अच्छा होता है वली कैफियत, लेकिन जब अल्लाह ने चाहा तो उस लकड़ी को घुन लगा और वो गिरे, तो फिर जिन्नात वहाँ से भाग गए। आयत 15 से 19 ना शुक्री का अंजाम। कौमें जब अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करती हैं, तो फिर उनके साथ क्या होता है? फिर अल्लाह ताला ने जो जो नेमत उनको दी होती हैं, वो एक एक कर से करके उनसे वापस ले लेता है। यही मिसाल कौम सबा की कुरान में और अरबों में इनके किस्से बड़े मारूफ थे। लकत कान अली सबा इनफी मस्कनी हिम आया। तो आज हमारे पास भी कुछ चीज़ें हैं, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कुछ ऐसी तहजीबें हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखकर फिर हमें भी इस चीज़ का यकीन आ जाना चाहिए कि जिनको भी अल्लाह ने ख़त्म किया, उसके पीछे कोई ना कोई नाशुक्री थी। आयत 20 से 21 इब्लीस की बात सही साबित हुई। यानी उसकी बात ये सच थी कि अक्सर लोग शुक्रगुजार नहीं होंगे और मुखलसीन पर मेरा काबू नहीं होगा। आयत 22 से 23 क्या फ़रिश्ते इंसानों के काम आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जब अल्लाह ताला उनको हुक्म दे। यानी अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर फरिश्ते भी इंसानों का कोई काम नहीं बना सकते। इतनी बड़ी कुदरत है अल्लाह ताला की। तो फिर बताओ कि तुम उसके साथ शिर्क क्यों करते हो? किसी और को वो मुकाम क्यों देते हो जो अल्लाह ताला का मुकाम है? और बात यह है कि वला तनफ़ौ शफ़ात इंदहु इल्ला लिमन अज़िना लहू हत्ता इज़ा फुज़ियान कुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाला रब्बुकुम। यानी फ़रिश्ते भी अल्लाह ताला से इतना डरते हैं कि अल्लाह का हुक्म सुनकर वो बेहोश हो जाते हैं। आयत 24 से 27 माबूद है जो रिस्क देता है। यानी अल्लाह ताला ही चूँकि रासिक है, तो फिर इबादत भी उसी की करोगे। आयत 28 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों की तरफ रसूल हैं। आयत 29 से 30 अज़ाब का वादा कब पूरा होगा। और आयत 31 से 33 दुनियादार कायदीन की पैरवी का इंजाम। यानी खुद तो जाएंगे आग में, दूसरे भी पीछे पीछे उनके पहुंच जाएंगे उधर। और 34 से 39 अल्लाह ताला की कुर्बत माल और औलाद से नहीं, नेक आमाल से मिलती है। یعنی ان کو بڑھائیے تاکہ اللہ کا قرب مل جائے. آیت 40 سے 42, مشرکین شیاطین کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہر بت کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. آیت 43 سے 45, شرک کرنے والوں کی ہٹ دھرمی. بڑی رونق سے کہتے تھے کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں نا, اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے, یعنی اپنے شرک کو بھی اللہ کے نام پہ ڈالتے ہیں. اور اسی طرح آیت 46 سے 50, سمجھانے کا دل سوز اسلوب ہے کہ دیکھ لو, نہیں ماننا چاہتے تو تمہاری مرضی ہے, اللہ نے تو ہر حجت تمام کر دی. اور حقیقت ہے کہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ اس قرآن میں تو کوئی جھول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو سمجھاتے ہیں, اب لوگ نہ سمجھنا چاہیں تو یہ پھر ان کا نصیب ہے, ان کی بات ہے. آج بھی اب دیکھیں, ماں اپنی پوری کوشش کرتی ہے بچے کو سمجھائے, لیکن جب بچے نہ مانے تو پھر کیا ہے, یہ ان کی مرضی ہے. اسی لیے فرمایا, قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتفکروا. اکیلے سوچ لو, دوسروں کو ساتھ لے کر سوچ لو, لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے اس نبی کے اوپر جنون نہیں ہے. اور آیت 51 سے 54, عذاب آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ چند باتیں تھیں, آپ اس میں سے کچھ آیتوں کو نوٹ کرتے ہیں ہدایات کے طور پہ. آیت 37, قرب الہی کے ذرائع. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں کہ تمہیں ہمارا مقرب بنا دیں, یعنی زیادہ مال والا ہمارے زیادہ قریب ہو, زیادہ بیٹوں والا اللہ کا قرب پائے, نہیں. الا من آمن وعمل صالحا. ہاں, ہمارے مقرب تو وہ ہیں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے. ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا اجر ملے گا, دگنے بدلے ملیں گے, اور وہ امن کے ساتھ بالا خانوں میں رہیں گے. تو کیا بڑھانا ہے, مال اولاد تو اللہ ہی دیتا ہے نا, جتنا جس کو جہاں تک بھی دے دے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہی نعمتوں سے فیض یاب کریں گے. اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طلب اور اس کی تڑپ کے مطابق دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ساری زندگی تو ہماری مال اور اولاد میں کھو جاتی ہے, لیکن اگر کبھی سوچیں تو صحیح, اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے پاس جو کچھ بھی رکھا ہے وہ ایک آزمائش کے طور پہ ہے, نصیحت کے طور پہ ہے. کیا تم اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھاتے ہو, ان نعمتوں کی قدر کرتے ہو؟ آپ نعمتوں کی قدر کرتے جائیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ نعمت آپ کی بڑھتی جائے گی. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہوئے صحیح استعمال نہ کریں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو لے جانے پہ بھی قادر ہے.